ओम शांति। हम कुछ टॉपिक मिला था सेवा में एकाग्रता। हमने बहुत सारी किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक किताब पढ़ी थी जगदीश भाई की, वो क्लास पढ़ा था, उस टॉपिक मिली थी एकाग्रता कितने प्रकार होते हैं। लेकिन कल से सोच रहा था कि सेवा ही सब्जेक्ट ऐसा है कि हर आत्मा से जुड़ा हुआ है, हर ब्राह्मण अपना सेवा करता है, खास मधुबन में तो सेवा की सेवा कुछ है ही नहीं है, कि सेवा में हम सेवा के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन सेवा में अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती, और सफलता नहीं मिलती तो खुशी नहीं होती। तो कोई भी सेवा करते हुए हमको कोई एक लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ, ये सेवा मैंने क्यों चुनी है। अनेक सेवा में समान कि भगवान ने मुझे सेवा के लिए चुना है। सेवा में कई बातें आती है, बहुत नम्रता रखनी पड़ती है। एक हमने अपने लाइफ में जब घर से निकला तब एक ही लक्ष्य रखा था कि मुझे मधु निवासी बनना है। इस लक्ष्य से लेके यहाँ पर आए थे, और मधु निवासी बनने के प्रोसीजर में सेवा एक अहम मुद्दा बनता है। तो सेवा के द्वारा ही यहाँ पर सेटल हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमारा धोबीघाट का जो अलग कपड़ा अलग करने का डिपार्टमेंट है, वो दादी के ऑफिस के बाजू में है, मुन्नी बहन के वहाँ ऑफिस के बाजू में। तो कई दादी अब मधुबन वालों के साथ में चर्चा करती तो हमको सुनाई देता था, हमने खुद कई बार सुना था। तो एक बार एक भाई दादी को पूछने आया था, बताने दादी सेवा में बहुत हम व्यस्त रहते हैं और ज्ञानी को नहीं हो बताए ना, मुरली कभी सुन पाते हैं, तो मैं सेवा चेंज करना चाहता हूँ मैं। तो हमने सोचा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, मेरा क्वेश्चन दादी को पूछा उसने, तो हम भी बड़ा उत्सुकता से वो सुनने के लिए मैं देख रहा था। तो दादी ने बहुत प्यार से उस आत्मा को जवाब दिया कि बोले आप किस लिए समर्पित हुए हैं। तो उसने बोला सेवा के लिए समर्पित हुए। तो बोला आपने कभी देखा है दादी को मुरली में। तो बोला आप मुरली पढ़ते हो। नहीं, दादी ने बोला अगर मुरली हम नहीं पढ़ते हम मुरली में नहीं आ पाते, कई बार लेट भी आ जाते हैं। ज्ञानियों के सब्जेक्ट पर्सनल सब्जेक्ट है, सेवा सब कुछ है, सेवा से आपको भाग्य बनाना है। ज्ञान है कि अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं सेवा से फ्री हो कि अगर ज्ञान करो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप छोटा मोटा लक्ष्य लेके सेवा में ज्ञान करने की कोशिश करो, लेकिन सेवा चेंज करने की कोशिश नहीं करो। सेवा चेंज करके ज्ञान को नहीं होता है, क्योंकि उस आत्मा को कई प्रॉब्लम्स आ रहे थे सेवा में। तो दादी ने बोला परिस्थिति स्थान चेंज करने से आपकी एकाग्रता या तो ज्ञान को नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसी दादी भी इसमें बोल पड़ी। इसी दादी ने बोला मैं तो कभी होम चंद्र भवन में गई ही नहीं मुरली सुनने के लिए, और मेरा ये ऐसी सेवा कि मैं कभी मुरली सुनती नहीं हूँ, पढ़ती भले बाद में जैसे मुझे समय मिलता है पढ़ती हूँ, लेकिन हमने कभी दादी कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ज्ञान को नहीं होता या तो मुरली नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपनी रुचि के हिसाब से वो करती हूँ। तो एक सेवा करते हुए अगर हमको सेवा में खुशी की प्राप्ति करनी है, एकाग्रता करना सेवा में चाहिए, तो एक लक्ष्य सामने रखना बहुत जरूरी है कि मुझे क्यों सेवा करनी है। तो हर मधुबन वालों का एक लक्ष्य होता है कि मुझे यहाँ फर्स्ट जब ट्रायल पर आते हैं मधुबन में रहने के लिए, तो पहले ये सोचते हैं कि भाई चलो डिपार्टमेंट की तरफ से संतुष्ट का सर्टिफिकेट मिले तभी हम यहाँ रह सकते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं हम लोग। सेवा के क्षेत्र में कई बातें हैं। फर्स्ट तो हम उस सेवा के क्षेत्र में हम खड़े होते हैं, हमारे साथ में हमारे सेवा साथी होते हैं। दूसरा ब्राह्मण परिवार या तो मदन वाले है जो भी सेवा साथी है वो होते हैं। चौथा हमारा जो मेन सीनियर इंचार्ज होते हैं, सब काम को रिस्पॉन्स पॉजिटिव चाहिए तभी हम सेवा में सफलता पा सकते हैं। दूसरा एक बहुत मेरा पर्सनल अनुभव में है कि लौकिक की तरफ से भी हमको सेवा के क्षेत्र में अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि हम कुछ कर रहे हो लौकिक वालों को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लौकिक माता जी छुट्टी लेके जब मधुबन में आए थे हम लोग, तो माता जी को ये नहीं मालूम था कि आश्रम क्या होता है, ब्रह्मा क्या होता है। माता जी का ये ख्याल था कि भाई एक आश्रम है, वह कोई बाबा मन एक सन्यासी है और उसकी ये सेवा करेगा जाके। लेकिन हमारे हेल्थ के कारण माता जी को वो टेंशन होता था कि वहाँ जाके क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जाके जंगल में लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती है, सेवा करने में हाथ पाँव दबाना पड़ता है, उस प्रकार के एक विजन माता जी के बुद्धि में था। तो मुझे कई बार बाबा की सेवा करते हुए डिस्टर्बेंस होता था, मुझे योग में भी माता जी कभी दिखती थी रोती हुई दिखती थी, और पार्टी वाले आते थे तो मुझे बताते कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपकी माता जी आपको बहुत याद कर रही है, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में और घर से कभी बाहर नहीं निकला था, डायरेक्ट हम इतने दूर आए थे, तो नेचुरली एक माँ का बच्चे में अटैचमेंट होता है खास। और माता जी भले ज्ञान में थी लेकिन उसमें विजन क्लियर नहीं था ब्रह्मा क्या है, कि अब ब्रह्मा को मरीज क्या है, क्योंकि अनपढ़ थी और बुजुर्ग भी थी, तो हमारे लिए डिस्टर्बेंस काफी बड़ा था वो। हमको समझ में नहीं आता कि हमको खुशी क्यों नहीं हो रही है, माना इस हिसाब से कभी कोई डिस्टर्बेंस योग में भी होता था हमको। तो हमने सूरज भाई की ये बात बताई थी, उन्होंने बताया था कि आप 21 दिन का निर्विघ्न योग, बहुत उससे बहुत प्रता चल रही थी, माना ये वो एक जैसी लहर चली तपस्या का साल था या शायद, तो उन्होंने बोला 21 दिन का आप योग करो तो आपको फिर उसमें सफलता मिलेगी और माता जी को भी ये मिलेगा। तो जब हमने वो 21 दिन के लिए योग विघ्न विनाशक योग, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वचैतन्य हूँ, ऐसा सामान लेके एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एक घंटा ऐसे बैठ के योग करने की कोशिश किया, पहले दिन बैठा तब मुझे पता चला कि मैं ज्ञान योग से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मन एकाग्र हो ही नहीं रहा था, कई डर मन में था कि पता नहीं मैं यह सक्सेस हो पाता हूँ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे वापस तो नहीं जाना है, घर में तो कई चैलेंज करके आया ताकि मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कई पीछे का रास्ता ब्लॉक करके आया था पूरा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरी मानसिक एकाग्रता क्यों नहीं हो रही, ये मुझे उस समय जवाब मिला कि मुझे ज्ञान के प्रति एक ज्ञान के प्रति मुझे एक क्या बोलते स्टडी के प्रति एक रुचि रखने बहुत जरूरी है मुझे, और वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी थी या तो वीक पॉइंट था कि मैं ज्ञान के प्रति बहुत जास्ती मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, रेगुलर जो बाबा के नियमानुसार करते थे जो एक्स्ट्रा करना चाहता, क्योंकि 20-20 में दादियाँ पहले 6 मास में 4 मास में एक बार योग भट्टी रखती थी और मधुमेहों के लिए खास रखती थी कि भाई आपको सेवा में टाइम नहीं मिलता आप लोगों को तो आप योग भट्टी करो, तो उस समय हमको स्टेबल होने के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भट्टी होती थी, लेकिन रामानुसार हमारी सेवा ऐसी थी कि सेवा करते करते वो करना पड़ता था, लेकिन पूरी छुट्टी लेकर नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे माइंड स्टेबल होने जाता था, योग लगता था, अच्छा लगता तब तुरंत वो दिन खत्म होते थे और फिर हमको सेवा में जाना होता था। तो फिर हमने देखा कि मैं सेवा में एकाग्र होने के लिए कई छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो कि हमसे हमारे सेवा साथी संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, कई बार हम डोंट केयर करते हैं। दूसरा कि बड़ों का रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है सेवा में, क्योंकि एकाग्रता एक सब्जेक्ट नहीं, उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई है। तो हमने इस बात करे क्योंकि हमको लौकिक में इस बात का अच्छा अनुभव था, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है घर में और हमारे पिताजी को 7 भाई है और लगभग 16 बहनें और 21 भाई, माना चाचा के परिवार, ऐसा टोटल कंबाइन परिवार, उसमें सबसे छोटा हूँ मैं, इसलिए मुझे उन लोगों के साथ में बहुत जास्ती माना फेस करना पड़ता इस बातों का कि सबको संतुष्ट करने के लिए ये बात को फेस करना पड़ता था। और ज्ञान में आने के बाद तो काफी जिम्मेदारी बड़ी हुई थी कि मैं ऐसा कोई रिएक्ट न करो कि वो मुझे बोले तुम ब्रह्मा को मैं जाके भी ऐसा करता है करके, तो वो मुझे अनुभव या मधुबन में बहुत काम आया। और लक्ष्य का जो थकावट हो या जो भी हो, और पर्सनली मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, ब्राह्मण परिवार की तरफ से नहीं था या तो लौकिक तरफ से नहीं था, इसलिए बाबा ही मेरा सब कुछ था, तो मैं बाबा से बहुत जस्ते कनेक्टेड रहा और बाबा को बोलता था मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, माना ज्ञान योग इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि लौकिक में पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ भी वो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था तो इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने फिर वो लक्ष्य रखा, बाबा बोला सेवा में कभी माना हम बहानेबाजी नहीं बनाएंगे या तो कोई तकलीफ हो तो आप माना किसी को नहीं शेयर करेंगे, लेकिन हम दिल से सेवा करेंगे। तो सेवा में एकाग्रता होने के लिए सबकी संतुष्टता, सबको संतुष्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, सेवा में हम बहानेबाजी न बताएं। और दूसरा कि सेवा के जो हमारे साथी है, हर आत्मा में कुछ न कुछ बाबा ने विशेषता देखी है तभी आप मधुबन में रखा है उसको, तो कोशिश करता था कि उस आत्मा आनो। दूसरी बात है सेवा में जब पहले पहले मना कई बार हम साक्षी को देखते थे कि हम क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे सेवा में, तो दूसरों को देखने की एक लौकिक में हमको आदत होती है कि इसने कितना किया, उसने कितना किया। या तो सेवा में जैसे 7 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे टाइमिंग है, तो हम अगर हम 5 मिनट पहले आ जाए तो सेवा करते करते सारी बुद्धि हमारे उसी में रहती थी कि वो आया नहीं अभी तक, वो नहीं आया अभी तक, वो नहीं आया अभी तक, तो उसमें बुद्धि जाती थी। और उस सेवा का जिस सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो ये छोटी मोटी बातें एकाग्रता होने के लिए और सेवा के साथ साथ ज्ञान योग का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि सेवा में तो बल मिलता है, उसमें खुशी मिलती है, लेकिन वो अल्पकाल की रहती है। अगर ज्ञान योग का उसमें साथ अगर ज्वाइंट नहीं है तो वो होता है। क्योंकि मुझे याद है चिमन चाचा ने एक बार अनुभव बताया था कि बाबा को जब 88 में 89 में शायद सब बंधुवानों को बाबा मिल रहा था, उस समय चिमन चाचा प्रेम भाई बर्तन बाबा के और हम हमारे लालदेव भाई धोबीघाट के तीनों को सेवा का सिवा कुछ नहीं दिखता था। कभी उनने कोशिश नहीं किया कि बाबा को जाके अव्यक्त बाबा हम मिलता था तो मधु वाले मिल लेता, हम फटाफट सेवा पर करके बाबा के सामने जाके बैठे, कभी उन्होंने सोचा केवल सेवा ही सब कुछ था उनके लिए। तीनों का रिकॉर्ड था मधुबन में, तो उस समय तीनों भी अपने अपने सेवा में व्यस्त थे। तो बाबा ने सबको मिलना चालू था, उस समय बाबा ने खुद अनाउंसमेंट किया था कि इन लोगों को बाबा बुला रहे करके, बाबा उनको बुला के लाव करके। तो तीनों को बुलाया था, लालदेव भाई को, हमारे चिमन चाचा को। तो चाचा को एक बाबा ने एक ही शॉट में वरदान दिया था कि आप सेवा मत 100% पास हो, लेकिन अगर पढ़ाई में ध्यान दो तो आप नंबर 1 जा सकते हो। बाबा का एक इशारा था उसके प्रति कि सेवा कारण मना उनका पढ़ाई के प्रति बहुत जास्ती रुचि थी या तो ध्यान नहीं देते, उनको सेवा में जो सुख मिलता था उनको उसमें नहीं मिलता होगा शायद, इसलिए मना कई चीज दूसरों को बाबा इशारा दिया तो हम भी अपने अपने लिए मना ध्यान रखते थे। तो दूसरा सेवा में, सेवा के संगठन में, मधुबन में हम सेवा के क्षेत्र में जितना दूसरों की बातों को समा सकते समाना चाहे। कभी हमको कभी कभी हमारे सीनियर्स लोग हमारी गलती न होते हुए हमको कभी कभी डांट मारते हैं या तो कुछ करते हैं, तो अगर हम उस समय हम उस बात को समाते हैं तो हमारी बुद्धि एक रोने में इजी हो जाता है। एक बार मुझे याद है कि मेरी कोई बड़ी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स भाई आए थे तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ हमारे किसी की गलती कारण वो वहाँ पर लॉस हुआ था काफ़ी बड़ा। तो उन्होंने सबसे, हम छोटे थे हमारे डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने हमको अच्छी तरह से डांट मारा था। तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करने वाला था, तब तक मेरे पीछे से, मेरे सामने से हमसे सीनियर जो भाई थे उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप कुछ नहीं बोलना है, आपको चुपचाप सुनना है केवल बस। तो उस समय मुझे वो सीन आया, याद आया मुझे कि दादी प्रकाशमणि पहले हर 15-20 दिन में मधुमानों को मिलती थी और कुछ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को चाहिए सेल्वेशन या तो डिपार्टमेंट की बातें, एक इंटरनल बातें करती थी। तो उस समय एक क्लास में दादी ने किसी को पूछा कि भाई किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ को हेल्प चाहिए, दादी का ये लास्ट वर्ड होता था क्लास के बाद। तो एक आत्मा उठ गई, उठने के बाद दादी, उसने बोला मुझे कुछ बोलना है। तो दादी इतनी बड़ी हस्ती थी तो सबने बोला, जैसे कॉमन कोई पूछते डिपार्टमेंट कोई चीज़ हेल्प की चाहिए इसलिए उठ गई होगी, लेकिन उस आत्मा का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कोई सेवा नहीं थी, वो आत्मा फ्री थी। तो वो आत्मा के स्टेज पर बैठ के उसको माइक दिया गया, देने के बाद फर्स्ट टाइम उसने दादी को इतनी उल्टी पुल्टी बातें कही दादी के फर्स्ट टाइम, क्योंकि दादी के लिए दादी ने उसने कुछ एप्लीकेशन दिया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है पर्सनली और उसको माना किसी के साथ मेरा नहीं जमता तो मुझे चेंजेस चाहिए। तो दादी ने विस्तता होने के कारण दादी उसको जैसी ध्यान नहीं दे पाए थे, तो पहले फर्स्ट उसने दादी के ऊपर सारा गुस्सा निकाल लिया। आप सोच नहीं सकते कि उसमें सारे मधुम वाले बैठे और दादी सबके लिए एक बहुत एक माँ के सम्मान है, तो उस समय सबके जैसे खून खुल रहा था जैसे क्यों ऐसे दादी को बोल रहे हैं, मैं जो भी हो लेकिन अलग से मिलकर दादी को बोल सकते, लेकिन सभा के बीच में, सारी मीटिंग के बीच में, तो हमने दादी को देख रहे, दादी के क्या रिएक्ट दादी करती है, हम सोच रहे थे इतनी बड़ी हस्ती है वे क्या रिएक्ट करती है, सबकी बुद्धि दादी की तरफ थी। तो दादी ने सबको इशारा किया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, ड्रामा सर। उस समय मुन्नी बहन जी अपने रूम में बिजी थी किसी काम से, तो फिर दादी ने केवल दादी ने बोला कि माइक हटा उसका, लाल लाइट लगा दो। तो उसका माइक हटाने के बाद भी वो रुकी नहीं आत्मा, बोलती गई, माइक हटाया, दादी ने बोला कोई कहीं कुछ नहीं बोलेगा, बाहर जाके भी कोई कहीं कुछ नहीं बोलेगा, जो बोले उसके खाली होने दो। उसने बोला बोल के जाके फिर उठ के अपनी जगह पर बैठ गई। बैठ गई तो फिर हम एक छोटी बुद्धि से ये सोच रहे थे कि पता नहीं दादी अभी उसको क्या रिएक्ट करती, आज नहीं तो कल, माना किस प्रकार उसको उस पर दादी अभी कुछ नहीं बोली, बाद में जरूर कुछ बोलेगी, माना हमको ये बुद्धि में था। तो फिर दूसरे दिन हम सेवा करके डिपार्टमेंट से पानी पीने के लिए वहां जा रहे थे, तो जो मैंने नजारा देखा वहां से पांडव एंट्री करने के बाद आंगन में दादी, वो छत के नीचे दादी बैठती थी 10 के आसपास, जूस पीने का टाइम होता 10 11 के आसपास, तो उस दादी को देखा, वो दादी के साथ चेयर में साथ में बैठी और इतनी हंसी मजाक से उससे दादी से बात कर रही थी, हम बड़ा शौक लगा हमको, हमने बोला दादी को कल इतना उसने उल्टा पुलटा बोला। तो बोलने का मतलब यह था कि समाने की शक्ति होना बहुत जरूरी, संगठन में हमको एकता रखने के लिए, वायुमंडल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी गलती नहीं है, दूसरा एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि एक आत्मा ने कुछ आपस में कुछ ऊपर नीचे हुआ था, तो होने के बाद उस आत्मा ने दादी को बोला कि दादी अगर वो आत्मा जब तक मुझे सॉरी नहीं बोलती तब तक मैं पानी को भी टच नहीं करूंगी। वो आत्मा बहुत सीनियर थी, बड़े थी, बाबा के समय की पुरानी आत्मा थी, उसमें कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था, साइकेटिक प्रॉब्लम था उस आत्मा को, लेकिन जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था उसको नहीं मालूम था कि वो आत्मा का क्या बैकग्राउंड है करके। तो जब वो दादी के कमरे के बाहर खड़ी होगी कि मैं पानी भी नहीं टच करूंगी, शरीर छोड़ूंगी, लेकिन उस जब तक सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैंने अपना ये करूंगी, तो उस समय फिर दादी ने उस आत्मा को बुलाया, बुलाने के बाद सामने दादी ने उस आत्मा को बोला कि आप सॉरी बोलो। तो दादी वो बोलता है मैं क्यों सॉरी बोलो, मेरी कोई गलती थी नहीं, उसी ने मुझे कुछ उल्टा पुलटा बोला इसलिए मैं तो सॉरी। तो दादी ने उसको साइड में लेके दादी उसको, छोटा सा कोई बड़ा आदमी नहीं था, छोटा सा सेवादारी इसमें था, दादी ने उसको हाथ जोड़ के बोला देखो भाई वो आत्मा तो कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उस आत्मा को, वो बीमार आत्मा है, तो आप केवल मेरे लिए और इस यज्ञ के वातावरण को ठीक रखने के लिए, कि वो आत्मा किसी भी स्टेज में जा सकती है, माना वो अपना हट पूरा करने के लिए, तो आप प्लीज मधुबन का वातावरण ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, लेकिन तुम सॉरी को उसको मेरे लिए करो बस। तो दादी जैसी बड़ी हस्ती अगर किसी को रिक्वेस्ट करेगी तो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो उस आत्मा ने फिर उसमें डिमांड बढ़ाया, दी मेरे पाव में गिरे, माना माफी मांगी ये करे, लेकिन उस आत्मा ने सब कुछ किया जो जरूरी था, लेकिन बाप दादी ने उस समय एक शब्द वर्ड किया था कि दादी आपको दिल की दुआ देगी, अगर यज्ञ वातावरण ठीक रखने के लिए अगर हम झुकते हो तो आपके झुके नहीं, लेकिन बाबा के दिल में आपने जगह बनाए, क्योंकि ये सेवा के क्षेत्र में ये छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एकाग्रता की छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो रहा इसका मतलब हमारे कोई उस फील्ड में हमारे गलतियां हो रही है, उस गलतियों को ध्यान रखना जरूरी है, छोटों का रिगार्ड रखना जरूरी है, बड़ों का भी रिगार्ड रखना जरूरी है, छोटों को अगर हमको कोई छोटी मोटी बात के लिए इशारा करता है तो हमको उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, उस समय हमको लगता है कि हमारी गलती नहीं, हमको क्यों इशारा कर रहे हैं वो, लेकिन बाद में हमको समझ में आता है कि हमारी कुछ गलती है तभी तो इशारा कर रहे हैं, उस समय अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम आगे हमको एकाग्रत करने के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि सेवा के बाद शाम को अब जब नुमा श्याम में हम योग करते हैं, बाबा ने इसलिए नुमा श्याम का योग रखा है कि जब योग में हम बैठते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने दिन भर कितना सहन किया है, कितना हमने बाबा के प्रति हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, अगर हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही है, किसी से हमारा झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, तो हम कोशिश होनी चाहिए कि हमको उसी समय बात को निपटना चाहिए, क्योंकि अगर हम निपटते सवारी करते नहीं है, निपटते नहीं है, तो बराबर योग के समय वो बातें हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए इस बातों को, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम सेवा एकाग्रता रह सकते हैं, उस एकाग्रता के द्वारा हम ज्ञान युग में भी आगे जा सकते हैं, नहीं तो अगर हम हमारा मन मोटा हुआ है, हम संतुष्ट नहीं सेवा से, तो ज्ञान युग में हम कभी भी पिकअप नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी जो लिखा था पढ़ा था वो कुछ याद नहीं, तो ओम शांति।